लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार के आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस रोम के जेमेली अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए भी अपने बुधवारीय आम दर्शन की धर्म शिक्षा माला को प्रकाशित करना जारी रखा है। उन्होंने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा माला में यीशु के बाल्य अवस्था पर चिंतन किया। संत पापा ने कहा कि यीशु की बाल्यावस्था को समर्पित धर्म शिक्षा के इस अंतिम भाग में हम 12 वर्ष के यीशु की चर्चा करेंगे, जो अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम मंदिर में रह जाते हैं। उसके माता पिता चिंतित उसे खोजते और 3 दिनों के बाद उसे पुनः पाते हैं। इस घटना में हम मरियम और यीशु के बीच में एक अति सुंदर वार्ता को पाते हैं, जो हमें यीशु की माता मरियम की यात्रा पर चिंतन करने को मदद करती है, जो अपने में निश्चित रूप में सहज नहीं है। वास्तव में मरियम अपने में एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी करती है, जहां वह अपने पुत्र के रहस्य को समझने के योग्य होती है। हम इस यात्रा की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पुनः विचार करें। अपने गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है और 3 महीने तक उसके संग रहती है, जब तक नन्हे बालक योहन का जन्म नहीं होता है। इसके बाद जब वह 9 महीने के गर्भ अवस्था में रहती, जनगणना के कारण उसे योसेफ के साथ बेतलहम जाना पड़ता है, जहां वह यीशु को जन्म देती है। 40 दिनों के बाद वे बालक को यरूशलेम मंदिर में समर्पित करने ले जाते हैं और इसके बाद हर साल वे यरूशलेम की एक तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन जब यीशु एक नन्हा बालक था, वे उसे हेरोद से बचाने के लिए लंबे समय तक मिस्र देश में शरणार्थी की तरह जीवन यापन करते हैं और केवल राजा की मृत्यु के बाद ही वे पुनः नाजरेत वापस लौटकर बस जाते हैं। यीशु एक वयस्क के रूप में जब अपनी प्रेरिताई शुरू करते हैं, मरियम को हम एक नायिका के रूप में काना के विवाह भोज में उपस्थित पाते हैं। वहां से लेकर यरूशलेम की अंतिम यात्रा तक, उसके दुख भोग और मृत्यु तक, वह उसका अनुसरण कुछ दूर रहते हुए करती है। पुनरुत्थान के बाद मरियम यरूशलेम में शिष्यों के लिए माता की तरह रहती है। वह उनके विश्वास को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करती है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि इस पूरी यात्रा में कुमारी मरियम आशा की एक यात्री है। इस अर्थ की गहराई में हम उसे अपने पुत्र की पुत्री स्वरूप पाते हैं, जो कि उसकी पहली शिष्या है। मरियम ने यीशु को दुनिया में लाया, जो मानवता की आशा है। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनकी परवरिश की, वह उनका अनुसरण करती है। वह अपने को सर्वप्रथम ईश्वर के वचनों से गढ़ने देती है। इस संदर्भ में संत पापा बेनेडिक्ट 16 लिखते हैं, ऐसा करने में मरियम सचमुच में एक निवास स्थल है, जो स्वाभाविक रूप में अपने में वहां से बाहर निकलती और वहां प्रवेश करती है। वह ईश्वर के वचनों पर चिंतन करते हुए उसे घोषित करती है। इस भांति यहां हम इस रहस्य को व्यक्त पाते हैं कि उसके विचारों में हम ईश्वरीय विचारों का सम्मिश्रण पाते हैं। उनकी इच्छा में हम ईश्वरीय इच्छा के मेल को देखते हैं। चूंकि वह अंतरंग रूप में ईश्वर के वचनों से जुड़ी है, वह अपने में देहधारी शब्द की माता बनती है। ईश्वर के वचनों से उनका इस भांति जुड़ा होना यद्यपि उन्हें अपने को एक नवसिखिए होने से नहीं रोकता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम की वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान यीशु को खोने का अनुभव उन्हें इतना अधिक भयभीत करता है कि वह योसेफ के संग अपने बेटे से कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखित होकर तुमको ढूंढते रहे। मरियम और योसेफ ने माता पिता के रूप में अपने एक बच्चे को खोने के दुख का अनुभव किया। वे यह सोचते रहे कि बालक यीशु भीड़ में अपने संबंधियों के साथ होगा, लेकिन उन्होंने बालक को अपने संबंधियों के बीच नहीं पाया। अतः वे एक दिन की यात्रा पूरी कर उसे खोजते हुए यरूशलेम के मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने पर वे उसे, जो उनकी आंखों में अब तक छोटा था, जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, अचानक बड़ा हो गया है। वह अब धर्म शास्त्रों पर चर्चा करने में सक्षम है तथा संहिता के ज्ञाताओं संग अपनी बातों और विचारों को रख सकता है। अपनी माँ की फटकार का सामना करते हुए यीशु अपनी सरलता में उत्तर देते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चित ही अपने पिता के घर में होऊंगा? मरियम और योसेफ यीशु की इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर का रहस्य जो बालक के रूप में हमारे बीच आया, उसकी बातें माता पिता की बुद्धि से परे जाती हैं। माता पिता अपने अनमोल पुत्र को अपने प्रेम के पंखों तले सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी ओर यीशु पिता के पुत्र स्वरूप अपनी बुलाहट को जीने की चाह रखते हैं। अतः हम उन्हें पिता के वचनों और उनकी सेवा में डूबा हुआ पाते हैं। संत पापा कहते हैं कि इस भांति संत लूकस के द्वारा यीशु के बाल्यावस्था की व्याख्या मरियम के शब्दों से समाप्त होती है, जो योसेफ का यीशु के प्रति पितृत्व की याद दिलाती है, और यीशु के पहले शब्दों के साथ, जो उन्हें यह पहचानने में मदद करता है कि यह पितृत्व किस भांति स्वर्गीय पिता से उत्पन्न हुआ है। वे निर्वादित रूप में इस प्रधानता को स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा अपनी धर्म शिक्षा के अंत में कहते हैं कि मरियम और योसेफ की भांति आशा से परिपूर्ण आइए हम भी प्रभु के पद चिन्हों पर चलें, जो स्वयं को हमारी योजनाओं में अपने को किसी स्थान तक सीमित नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें ईश्वर के दिव्य कोमल पितृत्व के प्रति प्रेम के उत्तर में पाते हैं। यह हमसे प्रेमपूर्ण उत्तर पुत्रवत जीवन की मांग करता है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस रात में अच्छी तरह सो पाए और 8 बजे के बाद ही जगे। यह 14 फरवरी से रोम के पॉलीक्लिनिक जेमेली में भर्ती संत पापा फ्रांसिस की स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट जानकारी है, जिसे आज सुबह 5 मार्च को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी किया गया। कल शाम पत्रकारों को दिए अपने संदेश में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि संत पापा की चिकित्सीय स्थिति स्थिर बनी हुई है और रात के दौरान योजना के अनुसार आज सुबह तक गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन फिर से शुरू किया जाएगा। नोट में स्पष्ट किया गया कि संत पापा को श्वसन में कोई कठिनाई नहीं हुई, वे बुखार रहित, हमेशा सतर्क, उपचारों में सहयोग करने वाले और दिशा निर्देशित रहे। सुबह उन्होंने उच्च प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी और श्वसन फिजियोथेरेपी ली और दिन में उन्होंने प्रार्थना और विश्राम के बीच बारी बारी करके काम किया और आज सुबह उन्होंने पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया। और संत पापा जॉन 23वें द्वारा पुनः जागृत एक प्राचीन रोमन परंपरा को बनाए रखते हुए राख बुधवार के दिन संत पापा आमतौर पर एवेंटाइन हिल पर संत सबीना महागिरजाघर में पश्चाताप शोभा यात्रा कर संत अनसेल्मो गिरजाघर में पवित्र मिसा के दौरान राख विलेपन की धर्म विधि का अनुष्ठान करते हैं। चूंकि संत पापा फ्रांसिस डबल निमोनिया के इलाज के लिए रोम के जमेली अस्पताल में है, इसलिए उन्होंने इस वर्ष के समारोह के लिए कार्डिनल डी डोनातिस को समारोह के अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया। परम धर्म पीठीय धर्म विधिक समारोहों के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रावेली के एक संदेश के अनुसार राख बुधवार का समारोह संत अनसेल्मो में शाम 4:30 बजे पश्चाताप धर्म विधि के साथ शुरू होगा। इसके बाद जुलूस संत सबीना गिरजाघर की ओर प्रस्थान करेगा। जुलूस में कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष धर्माध्यक्ष संत अनसेल्मो के बेनेडिक्टाइन मठवासी संत सबीना के डोमेनिकन फादरगन और कुछ विश्वासी भाग लेंगे। जुलूस के अंत में संत सबीना गिरजाघर में पवित्र मिसा अर्पित किया जाएगा, जहां राख की आशीष और माथे पर राख मलन की धर्म विधि भी संपन्न की जाएगी। उधर चालीसा काल में यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के सदस्य एक यूकरिस्टीय चेन में एकत्रित होकर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का आह्वान करते हैं और संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील दोहराते हैं। राख बुधवार से लेकर पूरे 40 काल तक यूरोप की कलीसिया शांति का आह्वान करने के लिए यूकरिस्टीय मेज के चारों ओर एकत्रित होगी। बैठक में यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के सभी सदस्य शामिल हुए। युद्ध के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने तथा प्रभु से न्यायपूर्ण और स्थायी शांति, विशेष रूप से यूक्रेन और पवित्र भूमि के लिए प्रार्थना करने और पवित्र मिसा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। यूकरिस्टीय चेन का उद्देश्य पूरे यूरोपीय महाद्वीप के लिए एकता का अनुभव और आशा का एक दृश्य संकेत बनना है। उपवास, प्रार्थना का समय और दान यह महसूस करने के लिए कि हम सभी भाई हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पीड़ा और बीमारी के इन दिनों में संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपनी अपील को नवीनीकृत किया। भाइयों और बहनों, आज शाम रोजरी प्रार्थना के पाठ के साथ हम बीमारों का स्वास्थ्य माता मरियम से संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इन शब्दों के साथ दिव्य उपासना और संस्कारों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल ऑर्थर रोख ने 4 मार्च की शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रोजरी प्रार्थना की अगुवाई की। 24 फरवरी से हर दिन रात 9 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में कलीसिया की माता मरियम की छवि के सामने कार्डिनलों, महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, रोमन कुरिया और रोम धर्म प्रांत के लोक धर्मियों ने रोजरी प्रार्थना में भाग लिया। दुख के रहस्य पर चिंतन करते हुए रोजरी माला करने और साल्वे रेजिना गाना गाने के बाद कार्डिनल रोख ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे अपनी आत्मा भेजे ताकि वह हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करे, ताकि विश्वास में दृढ़ रहकर हम प्रेम में बढ़ सकें और धन्य आशा के लक्ष्य की ओर एक साथ चलें। अंत में वहां उपस्थित समुदाय ने आइए हम अपने संत पापा के लिए प्रार्थना करें का गान किया और कार्डिनल रोख ने प्रतिभागियों को आशीर्वाद देकर विदा किया। उधर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं। 2024 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार हिंसा जिसमें 200 से अधिक लोगों की जानें चली गई, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए जिसमें लगभग 67,000 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा। आज संघर्ष के पीड़ित अपने आघात से जूझ रहे हैं। कई लोग राहत शिविरों में रहते हैं जबकि अन्य किराए के घरों या इम्फाल महाधर्म प्रांत द्वारा बनाए गए घरों में आश्रय पाया है। परिवार, घर, जमीन, संपत्ति की भारी नुकसान के साथ साथ वे अपने दैनिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी संघर्ष करते हैं। 1 मार्च को मणिपुर के सिंगनगाट के संत थॉमस पल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल ने विभिन्न राहत शिविरों से 63 प्रतिभागियों को एक साथ लाया जिसमें इन शिविरों के भीतर और बाहर सहायता और सेवाएं देने के लिए 12 स्वयंसेवी नेताओं का चयन किया गया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग ICMC द्वारा भारतीय कैथोलिक धर्माधिक्ष्य सम्मेलन के प्रवासियों के आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित लोगों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना था। सिंगनगाट के संत थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर अथनासियुस मुंग ने संघर्ष के विस्थापित पीड़ितों की सेवा करने के अपने अनुभव के बारे में वाटिकन न्यूज से बातें की। उन्होंने कहा, हमने उस समय की तुलना में बहुत शांति और स्थिरता प्राप्त की है जब हम केवल गोलियों की आवाज, हिंसा और विलाप सुन सकते थे। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कहा, लेकिन विस्थापित लोगों की दुर्दशा अब भी भयानक है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।